ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव 2082 की अंतिम रिपोर्ट कल राष्ट्रपति को सौंपेगा निर्वाचन आयोग। नवनिर्वाचित सांसदों को जनता और देश को केंद्र में रखकर काम करने का राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने किया निर्देश। चुनाव समीक्षा और महाधिवेशन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होगी परसों। और मध्य पूर्व में युद्ध जारी, ताजा हमले में ईरान के खुफिया मंत्री के मारे जाने का इसराइल का दावा। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने फागुन 21 को संपन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2082 के परिणाम सहित की समग्र रिपोर्ट कल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के समक्ष पेश करने की जानकारी दी है। आयोग के कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने बताया कि कल राष्ट्रपति पौडेल के समक्ष प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणाम सहित की समग्र रिपोर्ट पेश की जाएगी। इससे पहले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के अंतर्गत समानुपातिक प्रणाली से निर्वाचित 110 सांसदों को कल ही प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसी ने बताया कि कानून में निर्धारित क्लस्टर के अनुसार फागुन 21 को संपन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के तहत समानुपातिक प्रणाली से निर्वाचित सांसदों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। राष्ट्रपति के समक्ष निर्वाचन परिणाम सहित की समग्र रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद संविधान 2072 की धारा 76(1) के अनुसार सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता खुल जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों से देश को मुख्य केंद्र में रखकर जिम्मेदारी के साथ काम करने का आग्रह किया है। ललितपुर में रासोपा से निर्वाचित सांसदों के लिए आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम को आज संबोधित करते हुए अध्यक्ष लामिछाने ने कहा कि यदि वे गलत कदम उठाते हैं तो जनता एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं करेगी। उन्होंने सांसदों से अधिक अध्ययनशील और जिम्मेदार बनने का आग्रह किया। अध्यक्ष लामिछाने ने स्पष्ट किया कि जनता ने पार्टी पर जो भरोसा और आशा दिखाई है उसे देश में रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के माध्यम से विश्वास में बदलना अब सरकार की जिम्मेदारी है। नई सरकार बनने पर लोकतंत्र खतरे में पड़ने और अधिनायकवाद आने जैसी आशंकाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जनता के मत का सम्मान करते हुए सावधानीपूर्वक कार्य के माध्यम से सुशासन के नए मानक स्थापित किए जाएंगे। रासोपा ने पार्टी से निर्वाचित सांसदों के लिए कल और आज दो दिनों तक अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक परसों शुक्रवार के लिए बुलाई गई है। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन ललितपुर में शुक्रवार होने वाली बैठक में केंद्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी, सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्षों को उपस्थित होने के लिए निर्देशानुसार अनुरोध किया गया है। ये जानकारी कार्यालय के कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद दुलाल द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। बैठक में चुनाव की समीक्षा, आगामी दिनों में पार्टी की रणनीति और आने वाले महाधिवेशन के बारे में चर्चा होने की बात कही गई है। काठमांडू उपत्यका में आज पारंपरिक घोड़े यात्रा पर्व मनाया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नेपाली सेना द्वारा आज टुरीखेल में आयोजित घोड़े यात्रा 2082 समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर घुड़दौड़, घोड़ा जंप सहित विभिन्न रोचक कलाओं का प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को राष्ट्रपति पौडेल ने पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल, मंत्रीगण, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगों के प्रमुख एवं प्रतिनिधि सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों की उपस्थिति रही। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेताओं को चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोगी भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद दिया। नेकपा के संयोजक पुष्पकमल दहाल प्रचंड, पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, वर्ष मानपून सहित अन्य नेता आज प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर बालवाटार पहुंचे थे। उनके बीच हाल ही में संपन्न प्रतिनिधि सभा चुनाव और समसामयिक राजनीतिक विषय पर भी चर्चा हुई। ये जानकारी प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार राम बहादुर रावल ने दी। इसी तरह प्रधानमंत्री कार्की से राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ने भेंट की। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई भेंट में संपन्न निर्वाचन, संसद संचालन, लगायत के विषय पर बातचीत हुई। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व में जापानी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 46,778 लोगों को टीका लगाया गया है। जिले में पिछले वर्षों में जापानी इंसेफ्लाइटिस संक्रमण दर बढ़ने के बाद 35 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को लक्षित कर चैत 1 से 5 गति तक ये टीकाकरण अभियान चलाया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल खात ने दावा किया है कि ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातीब मारे गए हैं। कात्ज ने बयान में कहा कि पिछली रात ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर खातीब को भी खत्म कर दिया गया है। ईरान ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। हालांकि इजरायली मीडिया ने रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से पहले ही बता दिया था कि इस्माइल खातीब को निशाना बनाया गया था। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातीब को पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने 2021 में नियुक्त किया था। खातीब ने कई बड़े धर्मगुरुओं से इस्लामी कानून की पढ़ाई की थी, जिनमें ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई भी शामिल थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव 2082 की अंतिम रिपोर्ट कल राष्ट्रपति को सौंपेगा निर्वाचन आयोग। नवनिर्वाचित सांसदों को जनता और देश को केंद्र में रखकर काम करने का राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने किया निर्देश। चुनाव समीक्षा और महाधिवेशन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए नेपाली कांग्रेस की केन्द्रीय कार्य समिति की बैठक होगी परसों। और मध्य पूर्व में युद्ध जारी, ताजा हमले में ईरान के खुफिया मंत्री के मारे जाने का इसराइल का दावा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।